ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेष मद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नष्ट की। श्रीमद्भागवतम स्कंद 6 अध्याय 9 और श्लोक संख्या 49 कैंटो 6 चैप्टर 7 चैप्टर 9 टेक्स्ट नंबर 49। ना वेद कृपण श्रेय आत्मना गुणवस्तुवृका तस्य तान इच्छता अच्छेद यदि स अपि तथा विधा। न वेद कृपणा श्रेया न वेद कृपणा श्रेया आत्मनो गुण वस्तु का आत्मनो गुण वस्तु का तस्य तानि चतु प्रच्छेद तस्य तानि चतु प्रच्छेद यदि सोपी तथा विधा यदि सोपी तथा विधा। न वेद कृपणा श्रेया न वेद कृपणा श्रेया आत्मनो गुण वस्तु का आत्मनो गुण वस्तु का तस्य तानि चतो यच्छेन तस्य तानि चतो यच्छेन यदि सोपि तथा विधा यदि सोपि तथा विधा। बोलिए। मात जी ना, जोर से बोलिएगा ना, नहीं वेद जानता है, कृपणा कंजूस जीवात्मा, श्रेया परम आवश्यकता हित आत्मना आत्मा की गुण वस्तु विका, जो त्रिगुण की सृष्टि से मोहित है तस्य उसका तान मायाधारात्मन वस्तुएं इच्छता इच्छा करते हुए अच्छे प्रदान करता यदि यदि स्वपि वह भी तथा विध उसी प्रकार का मूर्ख कृपण जो अपने हित को नहीं पहचानता। अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा, जो लोग भौतिक संपत्ति को ही सब कुछ या जीवन का परम ध्येय मानते हैं वे कंजूस हैं, कृपण कहलाते हैं। वे आत्मा की परम आवश्यकता हित को नहीं जानते। यही नहीं, जो ऐसे मूर्खों की इच्छा की पूर्ति करता है उसे भी मूर्ख समझना चाहिए। मेरे साथ दोहराइएगा, जो लोग भौतिक संपत्ति को ही सब कुछ या जीवन का ध्येय समझते हैं वे कंजूस कृपण कहलाते हैं। वे आत्मा की परम आवश्यकता हित को नहीं जानते। यही नहीं, जो इन मूर्खों की इच्छा पूरी करता है वह भी मूर्ख है। पढ़ लीजिए, सब जगह ये लिखा है। तात्पर्य प्रभुपाद जी कहते हैं, मनुष्य दो प्रकार के हैं, कृपण और ब्राह्मण। जो ब्रह्म या परम सत्य को जानता है और इस प्रकार अपने असली हित को पहचानता है वह ब्राह्मण है। किंतु कृपण वह है जिसके भौतिक या अध्यात्म बुद्धि है। वह न जानते हुए भी मानव या देव जीवन को किस प्रकार बिताया जाए, कृपण त्रिगुण जन्य वस्तुओं के प्रति आकर्षित रहता है। इस तरह भौतिक लाभों की कामना करने वाले कृपण मूर्ख होते हैं, जबकि आध्यात्मिक लाभ की कामना करने वाले ब्राह्मण विद्वान हैं। यदि कोई कृपण अपना हित चिंतन के बिना किसी से कुछ मांगता है और उसे यदि कोई वह वस्तु देता है तो वह भी मूर्ख है। श्री कृष्ण मूर्ख नहीं है, वह अत्यंत बुद्धिमान है। जब कोई श्री कृष्ण से भौतिक लाभ की कामना करता है तो उसे वस्तुएं न देकर भगवान बुद्धि प्रदान करते हैं, जिससे वह भौतिक कामनाएं त्याग कर उनके चरण कमलों में आसक्त हो जाए। ऐसी दशा में यद्यपि कृपण भौतिक वस्तुओं के लिए भगवान से प्रार्थना करता है, किंतु भगवान उसकी सारी संपत्ति लेकर उस कृपण को बदले में भक्त बनने की सद्बुद्धि प्रदान करते हैं। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में भगवान कहते हैं, आमी विज्ञ ए मूर्ख विषय केने दिव स्वचरणामृत दिया विषय भुलाए। चूंकि मैं अत्यंत बुद्धिमान हूं अतः मैं इस मूर्ख को धन क्यों दूं, इसके बजाय मैं अपने चरण कमल की शरण की अमृत के लिए इसे प्रेरित करूंगा और उसके झूठे भौतिक सुख को बुलवा दूंगा। यदि कोई भक्ति के बदले भौतिक संपत्ति के लिए प्रार्थना करता है तो भगवान उसके धन को बदले में बुद्धि प्रदान करते हैं, जिससे वह क्रमशः अपने उनके चरण कमलों की सेवा करके संतुष्ट होने लगता है। इस प्रसंग में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका है, यदि मूर्ख बालक अपनी माता पिता से विष मांगे तो बुद्धिमान माता निश्चय ही उसे विष नहीं देगी। भले ही वह कितना ही अनुनय विनय क्यों न करे, भौतिकतावादी व्यक्ति को यह पता नहीं कि भौतिक संपत्ति को स्वीकार करना विष तथा जन्म मृत्यु के चक्र को स्वीकार करने तुल्य है। बुद्धिमान ब्राह्मण भौतिक बंधन से अपनी मुक्ति की आकांक्षा करता है, यही मनुष्य जीवन का असली कल्याण है। ओम ज्ञान तिमिरंदसि ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदंतिकम्। वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाय श्रीरूपं सग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने इति नामने। नमस्ते सरस्वतीदेवं गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासुदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। तो वृत्तासुर का आविर्भाव अध्याय है। इंद्र द्वारा अपने गुरु का अपमान, गुरु बृहस्पति को मान नहीं किया, नाराज होकर के गुरु बृहस्पति अदृश्य हो गए, जिससे इंद्र की गद्दी जाती रही, उसका जो शानो शौकत थी। और बाद में विश्वरूप जी की कृपा से जिनको देवताओं ने अपना गुरु बनाया था बृहस्पति की अनुपस्थिति में, उनकी कृपा से उनको दोबारा संपत्ति प्राप्त हुई। लेकिन इंद्र द्वारा विश्वरूप का वध किया गया, क्योंकि वो दोनों तरफ मंत्रोच्चारण कर रहे थे, देवताओं की तरफ भी और दैत्यों की तरफ भी। और इंद्र ने जब देखा कि ये हमारे दुश्मनों का भी भला चाहते हैं, तो इंद्र ने विश्वरूप का सर काट दिया। क्योंकि विश्वरूप ब्राह्मण है, इसलिए ब्रह्म हत्या का पाप उनको लगा, और इंद्र ने वो ब्रह्म हत्या इस भूमंडल में चार जगह बांटी, जल में, थल में, वृक्ष में और स्त्रियों में। थल में जो मरुस्थल है वो इंद्र का 1/4 अपराध का फल है, जो ब्रह्म हत्या का अपराध है। पानी में जो उफान आता है, बबूले जैसे उड़ते ना बुलबुले, स्त्रियों में मासिक धर्म और पेड़ों में गौंद गौंद निकलता, एक चौथाई चार भागों में। तो पूरा पाप अपना जल थल स्त्री और वृक्षों में डाल दिया ब्रह्म। तो बाद में विश्वरूप के पिता त्वष्टा ने यज्ञ किया, और उसमें यज्ञ में वृत्तासुर के आविर्भाव की एक कथा है। भगवान देवताओं को समझा रहे हैं, नवेद कृपणा श्रेय आत्मनो गुण वस्तु तस्य तानि छतो यच्छेत यदि शोपी तथा विधा। जो लोग भौतिक संपत्ति को ही सब कुछ या जीवन का उद्देश्य मानते हैं वे कंजूस कहलाते हैं। भागवत की बात है। और जो लोग भगवान का भजन करते हैं वो लोग बुद्धिमान कहलाते हैं। अब इस श्लोक के हिसाब से ये हुआ कि पूरी दुनिया मूर्ख है। फिर चाहे पॉलिटिकल ले लीजिए, सोशल ले लीजिए, या बिजनेस क्लास ले लीजिए, इस श्लोक का पहला चरण क्या कहता है लोगों को कि ये सब लोग मूर्ख हैं, कंजूस हैं। और ये बात भी सही है, क्योंकि जो व्यक्ति भौतिक कामना करता है, भौतिक भोग जी करके मरता है। आप ऐसे हजारों प्रमाण देख सकते हैं प्रैक्टिकली कि इन लोगों की दुर्दशा ही होती है। आप अभी वेबसाइट देखिए पॉलिटिकल, जितने भी बहुत फेमस नेता थे एक टाइम में जिनकी तूती बोलती थी, वो कोई पैरालाइज होकर के पड़ा है बेड में, शीशोर हो गया, सड़ गया एक तरफ। और कई लोग की स्मृति चली गई है, उन्हें कुछ मालूम ही नहीं है कहां है क्या है, पड़े हैं बस। अब नाम लेना नहीं चाहते, आप इंटरनेट पे ऐसे नेताओं के नाम टाइप करना है, आजकल कहां हैं जो अखबार में नहीं आते, किधर हैं, तो आपको न्यूज मिलेगी एक को पैरालाइज हो गया, कोई पागल हो गया है। धनपतियों में भी आपने देखा जो पूंजीपति लोग हैं, एक पूंजीपति कुछ साल पहले शरीर छोड़ा, वो मर गए थे वैसे 7 दिन पहले, क्योंकि आदमी जब कोमा में रहता है तो एक मशीन लगाई जाती है, क्या वेंटिलेटर कहते हैं उसको। तो वेंटिलेटर का काम क्या है, जो मरा हुआ आदमी है उसकी सांस चालू रखो, वो मशीन चलती है तो धक धक धक, तो लगता है नहीं नहीं अभी जीवित हैं, सांस ले रहे हैं, सांस नहीं ले रहे हो, जैसे आप वेंटिलेटर का वायर हटाएंगे बंद हो। अथा संपत्ति। और लेकिन संतों में आपने देखा होगा जो लोग भगवान का भजन करते हैं उनकी जेब में कुछ नहीं है, कोई आगे पीछे भी नहीं, उनका खबर भी नहीं किसी को मर गए, लेकिन चलते चलते बात करते करते हरि नाम लेते लेते कीर्तन करते करते आरती करते करते शरीर छोड़ देते हैं। इसलिए भौतिकतावादी जीवन अगर ये भगवान की सेवा के लिए है, जैसे प्रभुपाद जी तात्पर्य में कह रहे हैं कि भगवान उसको बुद्धि देते हैं, जैसे हम बहुत धनी हैं, भगवान बुद्धि दें कि हम अपने धन को भगवान की सेवा में लगाएं, तो धन को सेवा में लगाना तो भक्ति नहीं है, लेकिन भक्ति मार्ग में जाने के लिए रास्ता खुलता है। कोई ये कहे कि हम भगवान को करोड़ों रुपए दान में दे दें मेरी मुक्ति हो जाएगी, गलत सोच है। सच सोच क्या है, सांप बनना पड़ेगा। ब्रज में भी, वृंदावन में भी जो बड़े बड़े व्यापारी धनी लोग हुए और इन्होंने धाम में शरीर छोड़ा, उनकी भी मुक्ति नहीं होती है। आप गोवर्धन परिक्रमा करते हैं तो रास्ते में एक उद्धव कुंड की जगह आती है, तो उद्धव कुंड के पुजारी जी हैं ब्रज के, लंबे से पतले, तो एक दिन हम रात को परिक्रमा कर रहे थे, डेढ़ दो बजे, दो तीन लोग, तो हम नीचे आचमन करने के लिए गए, तो उन्होंने हमसे कहा कि आप डरना मत, हो सकता है कोई सांप या नाग आपको दिखाई दे उधर अंधेरे में। तो हमने कहा कुंड में नाग होगा और सांप कैसे? तो उन्होंने कहा कि मैं एक बार रात को आसमान करने गया था शाम को, तो मेरे को एक नाग दिखाई दिया वहां, तो बाद में मैं बहुत डर गया। अब क्योंकि चरणामृत आचमन के लिए मुझे जल तो कुंड से ही लाना है, तो मुझे डर लगा कि मैं कल से कैसे जाऊंगा। तो अचानक वो सांप रात को सपने में आया, तो उसने पुजारी से कहा घबराओ नहीं, मैं काटने वाला सांप नहीं हूं। तो वो सांप ने अपनी कहानी बताई इस ब्राह्मण को सपने में कि मैं मथुरा का बहुत बड़ा व्यापारी था, करोड़ों रुपये छापे, मिठाइयां बेची, रसगुल्ले बेचे, दूध में पानी घोल करके बेचा, पेड़े बेचे कलर डाल करके, तो बहुत करोड़ रुपया कमाया, और ठाकुर जी की भी सेवा करता था, लेकिन मरने के बाद इस सांप की ओर नहीं मिल। लेकिन वो सेठ बोला मैं फिर भी भाग्यशाली हूं कि मुझे सर्प की योनि ब्रज में मिली है, 84 कोष के अंदर मुझे शरीर मिला है सांप का। तो फिर भी क्योंकि ये इस शरीर से मेरी मुक्ति हो जाएगी, अगर कोई मुझे मार देगा या मैं मर जाऊंगा तो ये 84 योनियों में मेरी अंतिम योनि होगी, दोबारा दूसरी जावन की योनियों में नहीं जाना पड़ेगा। हमने तो संतों के मुख से ये भी सुना है वृंदावन में ब्रज में जो स्वर हैं ये वहां के पंडा लोग हैं, जो पंडित लोग तीर्थ घाट पर बैठे रहते हैं। क्योंकि धाम में कोई व्यक्ति भजन के लिए जाए तब तो ये मुक्ति का कारण है, लेकिन हम वृंदावन में, मथुरा में, तीर्थ स्थलों में कि आजकल वहां बहुत चहल पहल होती है, फलाना धंधा अच्छा चलेगा, धंधे के हिसाब से जाए तो मुक्ति नहीं होगी, या तो सांप बनना पड़ेगा, या धाम में आपने कुत्ते देखे होंगे, सुअर देखे होंगे, उन योनियों में जाना पड़ता है। कई लोग तो इसलिए भी धाम में रहते हैं कि वहीं रहेंगे, शादी कर लेंगे, बच्चे हो जाएंगे, बाद में हमारे बच्चे ब्रजवासी कहलाएंगे, ऐसे ब्रजवास नहीं होता है। उन लोगों को अगर कामना की पूर्ति के लिए धाम में गए हैं तो उनको उस योनि से जाना पड़ेगा धाम में भी, और बाकी जो धाम है ही नहीं, जैसे बॉम्बे, दिल्ली, इनका कलकत्ता, ऐसा तो कोई मतलब नहीं। इसलिए भौतिक, इसे भगवान संत लोग कहते हैं, भगवान ने जो कुछ दिया है उसे भगवान को अर्पित करो, जैसे दिया। चैतन्य महाप्रभु के साथ जब उनके दो नौकर नहीं, सनातन गोस्वामी के साथ जब राजा ने उनको नौकरी छोड़ने से मना किया कि नहीं जा सकते, तो रात को भाग के गए सनातन गोस्वामी। तो उस समय तो बहुत जंगली रास्ता है वृंदावन जाने के लिए, तो रास्ता भी नहीं था, जंगलों में भटक भटक के जाते थे, रास्ते में जंगली जानवरों का खतरा, फिर जंगलों में डाकू सरदार लोग होटल खोल के रखते थे कि कोई राहगीर आए, मुसाफिर आए, तो उसको कहते हमारे यहां रहो खाओ, और रात को उसका खून कर देते, लूट लेते। तो सनातन गोस्वामी के एक नौकर हैं, सनातन गोस्वामी ने कहा हम लोग वृंदावन जा रहे हैं, इसी जेब में कुछ रखना मत। तो इतने में रास्ते में एक रेस्टोरेंट, एक गेस्ट हाउस दिखाई दिया, वो चोरों के सरदार का था। सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी पाद की जीवनी में कथाएं आती हैं, तो सनातन गोस्वामी ने होटल वाले से कहा, हम आज की रात रहना चाहते हैं, आश्रय मिलेगा, कल हम फिर वृंदावन को प्रस्थान करेंगे। कहा आपके पास जो कुछ है जमा कर दो। तो सनातन गोस्वामी ने कहा, ये लो सब जमा करो। अपने नौकर से कहा, तुम भी जमा करो। उसने कहा, मैंने भी सब जमा कर दिया। दूसरे दिन सुबह हुई, सनातन गोस्वामी और उनके जो सेवक थे फिर वृंदावन की तरफ प्रस्थान करने लगे। तो रास्ते में सनातन गोस्वामी ने कान में आवाज पड़ी, कॉइन की, पैसे के सिक्के होते हैं, तो सिक्के बज रहे थे। सनातन गोस्वामी ने अपने सेवक से कहा, सिक्के की जेब में किसके बज रहे हैं? तो सेवक ने कहा, मैंने कल सब सिक्के उसको नहीं दिए, आधे दिए, आधे रख लीजिए, वो सिक्के बज रहे हैं। तो सनातन गोस्वामी ने कहा, पहली भगवान की कृपा यह है कि तुमने सिक्के रखे और तुमको उसने जिंदा छोड़ दिया रात। चलो हम चोरों के सरदार से तो बच गए, लेकिन धाम में अगर तुम्हें सिक्के लेके गए फिर तुम्हारा इस संसार से बचना मुश्किल है। इसे सनातन गोस्वामी ने सेवक से कहा, तुम इधर से ही बंगाल वापस जाओ, क्योंकि तुम्हारे साथ अपने को भी खतरा है। तात्पर्य है, तात्पर्य सिक्कों से नहीं है, तात्पर्य है कि धाम में पैसे की नियत, लाभ की नियत, ये भक्ति में बाधक है। ये सनातन गोस्वामी शिक्षा देते और बाकी भगवान ने संसार में भेजा है सब देंगे। चाणक्य नीति में लिखा है, बच्चा मां के गर्भ से बाद में पैदा होता है, लेकिन उसकी मां के स्तनों में दूध पहले आ जाता है। तो स्तनों में दूध उसके परिवार वालों ने भरा है पहले से, या गवर्नमेंट की कोई व्यवस्था है? भगवान की व्यवस्था। इसलिए जो भगवान बच्चे को इस संसार में भेजने से पहले उसकी मां के स्तनों में दूध भेज देते हैं, वो जरूर उसके बाकी जीवन की भी रक्षा करेंगे, ऐसी सोच इस संसार में सबकी होनी चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। सब मिलेगा लेकिन सबसे पहले भगवान। एक राजा के राज्य की कथा है। एक राज्य में राजा नहीं है, जगन्नाथ जी हमको बोलते थे आप कथा सब। तो वहां के मंत्रियों ने एक सिंहासन लगा रखा है सबसे ऊपर और बोर्ड लगा रखा है, जो कल सुबह सबसे पहले सिंहासन पर पहुंचेगा वो यहां का बादशाह होगा, राजा। और सिंहासन तक जाने का जो रास्ता है उस रास्ते में बहुत बड़ी मार्केट बना के रखी है, सब है, मॉल खोल रखे हैं, मिठाइयों की दुकानें हैं, जितनी भी जीवन की आवश्यकताएं हैं सब उस बाजार में उपलब्ध है। अब सब लोग राजा बनना चाहते हैं, कल सुबह सबसे पहले मैं ऊपर जाके बैठूं। और दूसरे दिन हुआ क्या, जब सुबह सब उठे तो बाजार के रास्ता था, बाजार से मार्केट से ऊपर को जाना है ना, तो ठीक मार्केट का जो मेन गेट था उसके सामने गरम गरम जलेबी बन रही थी। तो जो सबसे पहले गया सुबह सुबह उसने कहा, थोड़ा जलेबी तो टेस्ट कर लो। तो जलेबी खाने लग गया। अच्छा मार्केट कैसा है? फ्री में सब, पैसा नहीं देना है। जलेबी खाओ, रबड़ी खाओ, गरम दूध पियो, जो मर्जी खाओ, पैसा देने की जरूरत नहीं, खाओ बस। फ्री ऑफ चार्ज लिखा है सर। दूसरा गया, आज मैं सबसे पहले ऊपर पहुंचाऊंगा। देखा एक जगह गर्म गर्म गुलाब जामुन तैयार है, सोचा जाना तो है ही, फिलहाल दो गुलाब। पैसा हो रहा नहीं, नहीं नहीं, जितना खा सकते हो। गरम गरम गुलाब जामुन खाने में रहा, कोई दूसरे में रहा, क्योंकि सारी संसार की भोग्य वस्तु वहां उपलब्ध हैं। तो हुआ एक ही शाम तक एक आदमी भी ऊपर नहीं पहुंचा, सब मार्केट में ही फंस गए। कोई जलेबी खाने में, कोई गुलाब जामुन खाने में, कोई ड्रेस खरीदने में, कोई पिक्चर देखने में, कोई टहलने में, कोई बीच का बहुत पुराना दोस्त मिल गया उससे बात करने में, इसी में ही उलझ गए। सत्यता क्या है? अगर कोई आदमी उन वस्तुओं से मुंह ढक करके कुछ देर के लिए अपने मन को मार करके सीधे ऊपर चले जाए और जाके सिंहासन पर बैठ जाए, और जैसे वो बैठ जाए वो राजा बनेगा, और राजा का मतलब पूरे मार्केट का मालिक हुआ नहीं हो, और उसको किसी गुलाब जामुन या जलेबी वाली दुकान के बाहर खड़े होकर जलेबी खाने की जरूरत है, ऊपर से ऑर्डर कर सकता है, जल्दी से गर्म जलेबी लाओ, एक मिनट पाएगी। लेकिन थोड़ा सा त्याग करना, त्याग क्या है, ऊपर जाते वक्त इधर उधर नजर नहीं घुमानी है। जैसे ऊपर पहुंच जाएगा सारी वस्तुओं का स्वामी वो है। ऐसा नहीं कि जो लोग वस्तु का त्याग करते हैं उन्हें कुछ नहीं मिलता। स्वर्गारोहण पर्व में महाभारत में कथा है पांडवों की। पांडवों ने भगवान की सेवा की, उनके उपदेशों का पालन किया, कष्ट सहे, कितना दुख झेला, धर्म का मार्ग अपनाया, तो लेकिन उनका परलोक कैसा है? अगर यहां उन्होंने भगवान के लिए कुछ त्यागा है, स्वर्ग में कितना वैभव पांडवों को मिला। नंदन कानन वन पारिजात, भक्त लोग उपवास रखते हैं भगवान के लिए चातुर्मास में। पहले मैंने हरी सब्जी नहीं खानी, फिर एक महीना दूध, एक महीना दही, एक महीना उड़द की दाल और सरसों का तेल। तो अगर हम चार महीना थोड़ा भगवान के लिए त्याग करते हैं, इसका फल क्या होगा? इसका करोड़ों करोड़ों गुना हमको ऊपर मिलेगा। पहले तो इधर ही मिलेगा, लेकिन इधर भोग कहां कर पाए। संसार में भोग की कामना तो रहती है, लेकिन व्यक्ति भोग नहीं कर पाता। कोई शराब पीने का शौकीन है, आधी बोतल में ही डगमगा जाता है, क्या खाएगा। बहुत भूख हमको लगती है, मन करता है पूरा किचन साफ कर दें, दो रोटी खाने के बाद नहीं नहीं अब। कामना बहुत है, पूरा भोग जाऊं, लेकिन जैसे ही भोगना शुरू करते हैं थोड़े से मैं तृप्त हो जाता हूं। और कई देवता ऐसा भी होता है जेब को पेट भर भी गया फिर पैकिंग कर लो दोपहर के लिए, शाम के लिए, ये कामनाएं बनी रहती हैं। वैसे ही कुछ लोग ये संसार में तो खूब पैसा कमाते ही हैं, फिर भक्ति नहीं करेंगे, पुण्य कार्य कर लेंगे, प्याऊ लगवाना, अस्पताल खोलना, धर्मशाला। पुण्य कर्म क्या है? पुण्य कर्म से स्वर्ग मिलता है। चैतन्य चरितामृत में सनातन गोस्वामी पाद ने चैतन्य महाप्रभु और राय रामानंद संवाद में बात कही गई। जो लोग अथाह संपत्ति कमाते हैं, पुण्य भी करते हैं, दान करते हैं, लेकिन भक्ति नहीं करते हैं, तो राय रामानंद से पूछते हैं चैतन्य महाप्रभु, इन लोगों का क्या विचार है, ये लोग ऐसा क्यों करते हैं? राय रामानंद कहते हैं ये चाहते हैं कि हम स्वर्ग में जाएं। स्वर्ग में क्या मिलेगा? भक्ति मिलेगी? स्वर्ग में भक्ति है ही नहीं, तो मिलेगी कैसे? तो चैतन्य महाप्रभु आगे पूछते हैं और पता लगाओ तो क्या क्या चाहते हैं ये लोग। तो राय रामानंद कहते हैं व्यक्ति संसार में खूब भोग भोगता है, फिर सोचता मरने के बाद भी कहीं छूट ना जाए। तो सुना है स्वर्ग में सुंदर सुंदर अप्सराएं मिलती हैं, इधर से पत्नी छोड़नी पड़ेगी, ये हमको छोड़ देगी, फिर पत्नी चाहिए, तो स्वर्ग में जाएंगे तो कोई ना कोई मिल जाएगी। अब उर्वशी रंभा में इनका तो नहीं मिलेगी, वो तो इंद्र के पास रहती हैं, उनके घर में जो झाड़ू और पोछा लगाती वो भी मिल जाए। अगर यहां का कोई करोड़ों रुपए का दान करने वाला है, सोचे मुझे स्वर्ग में जाकर के मैं वहां के सेठ अप्सरा से शादी करूंगा, ये भूल है हमारी। स्वर्ग की अप्सराओं के घर में अगर कोई उनका टॉयलेट भी साफ करती होगी वो भी मिल जाए, फिर भी समझो हमारा दान पुण्य सफल हो गया, वो भी कहां मिलेगी। वो सुंदर होते हैं लोग, हम लोग चमगादड़ जैसे हैं, उनके सामने क्या है। स्वर्ग की अप्सराओं का कलर दूध के कलर, जो प्योर दूध आता है, थैली वाला नहीं, दूध की तरह कलर होता है आपका। और अप्सराओं के शरीर से सुगंध आती है, और हम लोग 50 बोतल सेंट मारेंगे तब भी खुशबू नहीं आती, थोड़ी देर खुशबू आती है, दूसरे दिन बदबू आती है, सड़ जाता है ना। तो ये कामना जो है स्वर्ग तक, और बाद में होता क्या, उधर भी हम भोग भोगते हैं, जैसे पुण्य कर्म नष्ट हुए सीने पुण्य मृत लोक बिशंति, जैसे बीजा पूरा हो गया जा, होटल का डिपॉजिट पूरा हो गया जा, जब तो होटल में आपका डिपॉजिट तगड़ा जमा है, एक घंटी दबाने से सब आएगा। एक इंटरकॉम का नंबर लगाओगे, चाय 2 बजे आ रही है, जैसे डिपॉजिट पूरा हुआ फिर घंटी बजाने से कुछ आएगा, घंटी बजाने पर भी बोलेंगे क्यों बजा रहे हो, इसका चार्ज आता है। तो स्वर्ग में आदमी कब तक रहता है, जब तक पुण्य कर्म शेष हैं, और जैसे ही पुण्य कर्म क्षीण होते हैं फिर इस भौतिक जगत में गिर जाता है। इसलिए श्री प्रभुपाद और इस श्लोक के तात्पर्य में सबसे बड़ी कामना क्या है, भगवान की भक्ति। न धनंग न जनंग न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति हेतु की त्वयी। चैतन्य महाप्रभु वृत्तासुर भी प्रार्थना करते हैं भगवान से, आगे के अध्याय में आएगा। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्टम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा समस्तां बृहस्यकांक्षे। अगले अध्याय बट्टासुर प्रार्थना करते हैं, जब इंद्र उनको मारने के लिए वज्र उठाता है, दधीचि की हड्डियों से वज्र बनाया गया, भगवान विष्णु की प्रेरणा से बना है वज्र, इसलिए बट्टासुर कहते हैं इंद्र से कि आपका प्रहार जो है वो व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें भगवान की प्रेरणा है। और दधीचि जैसे तपस्वी की हड्डियों का वज्र बना है, तो अगर आप इसको मुझसे फेंकोगे मेरा बचना बिल्कुल संभव नहीं, लेकिन मैं कुछ प्रार्थना भगवान से करना चाहता हूं, मुझे थोड़ा सा समय दीजिए कहता है। तो उस समय ये बात बृहस्पति जी कहते हैं, नच नाक पृष्ठम नच पारमेष्टम, कुछ नहीं चाहिए भगवान मुझे, मुझे न स्वर्गिक सुख चाहिए न योग सिद्धि चाहिए। न योग सिद्ध पुनर्भवम मा, क्योंकि योग सिद्धि भी पुनर्जन्म का कारण है। देखिए हम लोग वैष्णव हैं, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के अनुगति में भजन करते हैं, प्रचार करते हैं, ब्रह्म मधुगौड़ी संप्रदाय के समर्थक हैं, हम लोगों को समाज में सही सही संदेश देना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले जो द्वारिकापीठ के शंकराचार्य जी हैं, स्वरूपानंद सरस्वती, उन्होंने जो शिरडी के साईं बाबा के बारे में बोला, ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही। ये हमारे वैष्णव समाज के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। ये वृत्तासुर अपनी प्रार्थना में कह रहे हैं, न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा। शिरडी को आपने देखा, वो एक गुरु हैं, फकीर हैं, संत हैं, उनको पब्लिक ने भगवान बना दे रहा था। अब हम भी कथा में प्रचार में कहते होते हैं, हमारी तो सुनता कोई है नहीं, क्योंकि अपना वजन नहीं है ना। ऐसे ही सामने सामने सर हिला देते हैं, पीठ पीछे बोलते हैं, क्या बोलते रहते हैं। तो ये भगवत कृपा होगी, वो स्वरूपानंद सरस्वती ने ही बोल दिया। हम लोगों को इन विचारों का समर्थन करना है। खाली कपड़ा पहनने से, बड़ा बड़ा भाषणबाजी करने से कुछ नहीं होगा, रिस्क लेना चाहिए। देखो, एक पॉलिटिकल आदमी कितना बड़ा रिस्क लेता है। अभी जो भारत का प्रधानमंत्री है, कैसे प्रधानमंत्री बन गया कि मैं महंगाई को हटा दूंगा, बोला ना, और 40 रुपए किलो टमाटर 80 रुपए किलो हो गए, हटी। झूठ बोल करके एक आदमी प्रधानमंत्री पद प्राप्त कर लेता है। गरीब लोगों की भावनाओं का फायदा उठा करके लोग कहां से कहां पहुंच जाते हैं। ये योग सिद्धि के द्वारा लोग थोड़ा चमत्कार करके भगवान बन जाते हैं। हम लोग महाप्रभु के अनुगति में भजन करते हैं, ब्रह्म मधु गौड़ी संप्रदाय। जो सिद्धांत फिलोसॉफी हमारे पास है, इस भूमंडल में किसी के पास नहीं। जो सिद्धांत भागवत का सिद्धांत, जो गौड़ी सिद्धांत हम लोगों के पास जो पूंजी है, इस भूमंडल में भी नहीं, देवताओं के पास भी नहीं। भागवत गीता के नवम अध्याय का एक श्लोक है, अपिचेत शुद्राचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरैव च मन्तव्यम सम्यक व्यवस्थितो ईश। इस श्लोक के ऊपर एक बार देवताओं में विवाद छिड़ गया। ऊपर स्वर्ग में इंद्र वरुण सब देवताओं की कमेटी बैठी थी, लेकिन इस श्लोक का सही अर्थ नहीं जान पाए कोई। तो उस समय देवता लोग नवद्वीप में, जो हमारे परम वैष्णव हैं सच्चिदानंद घन भक्त विनोद ठाकुर के पास आए। भक्त विनोद ठाकुर उस समय जज थे उड़ीसा के कटक जिले में। तब देवताओं ने कहा, आप स्वर्ग में हमारे साथ चल दीजिए, हमारी जो समस्या है इसको समाधान कर दीजिए। तो भक्त विनोद ठाकुर को लेकर के स्वर्ग गए, ऐसी कथा आती है बंगला ग्रंथों में। और भक्त विनोद ठाकुर ने जजमेंट दिया देवताओं की सभा में इस श्लोक के ऊपर। इसका मतलब क्या है, देवता लोग भी जो चीज का समाधान नहीं कर सकते, वो समाधान वैष्णवों के पास है। अगर हम ठोस प्रचार करें समाज में, मान सम्मान न दे करके देखेंगे, अभी ये बहुत बड़ा मिनिस्टर है, इसकी निंदा कैसे करें, कहीं हमारा काम बिगाड़ देगा तो कैसे बिगाड़ देगा। क्या 33 करोड़ देवी देवता हमारी मिनिस्ट्री के फेल हो गए। भक्त को डरने की कोई जरूरत नहीं है। भक्त को कब डरना चाहिए, जब वो सच्ची बात को छुपा करके ठकोसला करता है। सही सही बात समाज में है, सिर्फ उपाध में सही सही बात पे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हमारे वैष्णवाचार्य हैं, पहले श्रीधर स्वामी वृंदावन में उनको खत लिखा एक बार, क्या बार बार परलोक की बात करते हो, बताओ। इस वक्त हमारे देश के तो प्रोमिनेंट लीडर नेता जिनका विश्व में नाम है, वो इस वक्त कहां है। उसमें सर्वपल्ली राधाकृष्णन इस भारत के राष्ट्रपति थे। तो सिद्धर स्वामी ने पत्र का जवाब दिया, जिन दो नेताओं के बारे में आप पूछ रहे हो इस वक्त कहाँ हैं, वो स्वीडन के एक शहर में, उस शहर के फलानी गली में दो कुत्ते बने हुए हैं। अब नाम हम नहीं बताएंगे, आप सबको मालूम है। तो जैसे ही पूछा तलक से बता दें, और इंक्वायरी हुई वहां स्वीडन में, तो दो कुत्ते पोमेरियन वहां थे। इसमें भैष्माचार्य का क्या कहना है, कुत्ता मतलब दिन भर भौंकना, जब हम दिन भर भौंकेंगे उसमें न भगवान की कथा है, न भगवान का कीर्तन है, न किसी का आत्म कल्याण है, न किसी का परलोक कल्याण है, तो भौंकना कैसा हुआ, कुत्ते के सदृश हुआ ना। इसलिए अगली योनि क्या होगी, कुत्ते। इसे भागवत के आश्रय में, और भागवत में तो 18,000 श्लोक हैं, इन 18,000 श्लोकों के ऊपर करोड़ों टिप्पणियां तात्पर्य लिखे गए हैं। प्रभुपाद जी ने भगवत गीता के एक एक श्लोक पर कितने बड़े बड़े तात्पर्य लिखा। वैसे हमारी पूर्ववर्ती आचार्यों ने, विश्वनाथ चक्रधी ठाकुर ने टीका लिखी है भागवत के ऊपर, चैतन्य चरितामृत पर हजारों हमारी वैष्णवाचार्यों की टीकाएं हैं। तो ऐसे ऐसे ग्रंथ, ऐसे ऐसी पूंजी हमारे पास है, हम समाज में ठोस प्रचार करें, जिससे जो समाज में पाखंड है, जो गॉड हैं, और हैं क्या जीओडी नहीं डीओजी हैं, तो उनका पर्दाफाश हो, तब समाज को सही दिशा हम दे सकते हैं। और भगवान के लिए हमने जो मार्ग अपनाया है, वेश अपनाया है, इसको धारण करने की सार्थकता होगी। खाली पुलिस का वर्दी पहनने से क्या होगा, आर्मी की वर्दी पहन ली, बंदूक कंधे में तान रखी, फायर करना नहीं है तो बंदूक से क्या करेंगे, बंदूक फायर करने के लिए होती है ना। तो इससे खूब सनातन धर्मों का प्रचार, और जो लोग भगवान बन रहे हैं, समाज में भौतिकतावाद का एक कारण और भी है कि ये सब पाखंडी लोग भगवान हो रहे हैं, थोड़ा थोड़ा चमत्कार दिखा है भगवान, ये मूवी स्टार भी भगवान हो रहे हैं आजकल। कई मूवी स्टारों का कलकत्ता में तो एक कलकत्ता क्लब बना हुआ है बंगाली लोगों का, ये लोग जन्मदिन पर केक काटते हैं और भगवान मानते हैं, आरती भी लिख रखी है, और एक का तो आरती लिखा था वो आजकल जेल में आरती कर रहे हैं, कई लोग जेल में भी आरती कर रहे हैं। इसे खूब भगवान चैतन्य महाप्रभु की वाणी, पृथ्वी ते आछे नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होए वे मरा नाम, हर जगह भगवान के नाम का प्रचार, हरे कृष्णा 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 हरे, हरे राम राम। एक कीर्तन करिए, टाइम हो गया ना, कीर्तन के बाद तब तो बारिश भी बंद हो जाएगी ना। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। माधव जय जय मुकुंद जय जय, माधव जय माधव जय जय मुकुंद जय जय, माधव केशव जय जय नटवर जय जय गय केशव जय जय नटवर जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 हरि बोल 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 जय प्रभु पदा जय प्रभु पदा प्रभु पदा जय प्रभु पदा जय गुरु देवा जय गुरु देवा गुरु देवा जय गुरु देवा निताई गौर प्रेमानंदे। किसी का प्रश्न कमेंट्स है तो पूछिए। माइक माइक कहाँ है? माइक नहीं है? अरे
हरे कृष्णा। ब्रज में कोई स्वरजनी या सर्पजनी पाता है तो शरीर छोड़ने के बाद तुरंत मुक्ति हो जाता है ना, फिर उच्चाजनी उसका होता है ब्रज में?
मुक्ति मतलब मुक्ति का गीता में बताया ना, यंग यंग वापि स्मरणम भावम त्यजन्ते कलेवरम तंग तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता।
सर्पजनी या स्वरजनी के बाद उसका कौन सा जनी होता है ब्रज में? जैसा हमारा 84 लाख का योजनी है, ऐसा ब्रज में कोई स्वरजनी या सर्वजनी पाता है तो शरीर छोड़ने के बाद उसका?
ब्रज में अगर हम कोई गलत काम करेंगे धाम में तो जो जो भोग हमने वहां किया वो योनि मिलेगी। जैसे धाम में रह के हमने वहां काम वासना की तो वो योनि हमको भोगना पड़ेगा। स्वर वाला खूब बच्चे पैदा कर गंदी नाली में पड़े रहो, पैसे का जैसा भी बताया खूब पैसा कमाया, कार्तिक में मेला लगता है पूरी दुनिया में लाखों लोग आते हैं अच्छी कमाई होगी और धंधा करने बैठ गए और करोड़ रुपया छापा तो उसको सांप की योनि, क्योंकि सांप के सर पर मणि होती है तो उसको सांप की योनि भोगना पड़ेगा। और लेकिन अगर एक ही भोग होगा, ये भी पैसा भी काम भी नेतागिरी भी डाकूगिरी भी करेगा फिर सब जाना पड़ेगा। अगर खाली पैसा सांप का योनि उद्धार, खाली काम वासना सुवर का योनि उद्धार, किसी को बेवकूफ बनाया सियार का योनि उद्धार, अब चूना भी लगाया बेवकूफ भी बनाया ढोंगी भी बने भगवान भी बन गए फिर तो सब पूरा चक्कर अलग अलग सेक्शन होगा ना। फिर मर्डर का अलग, चोरी का अलग, चीटिंग का सेक्शन अलग है और इनकम टैक्स नहीं चुकाए फिर उधर का तारीख अलग, सिलेबस का अलग, सेंट्रल एक्सरसाइज अलग, सारा अलग आएंगे ना संबंध, तो उधर भी संबंध आते हैं। भागवतम का पांचवां स्कंद पढ़ो ना, 28 तरह के नरकों का वर्णन। तो ये तो है, कोई भी चाहे वो वैष्णव है, ये गोस्वामी पाद तो यहां भी लिखते हैं, देखो अगर कोई वैष्णव बन के माला जाप भी कर रहा है 64 माला और दिन रात भगवान की चर्चा, लेकिन अपराध करता है धाम में किसी वैष्णव के प्रति, जी गोस्वामी पाद ये बात कहते हैं ना, जब मेरा भाई से पूछा, एक प्रसंग आता है कि मेरा भाई को कहा आप स्त्री हो, तो मेरा भाई ने कहा कि अभी भी आपके मन में देहात्म बुद्धि है स्त्री और पुरुष का, मैं स्त्री हूं मैं तो नहीं जानती, मैं तो कृष्ण की दास हूं। वहां पर जीव गोस्वामी पाद का एक वक्तव्य है, वैष्णव भी अगर कोई अपराध करेगा वहां धाम में तो उसको भी उसका भुगतान करना पड़ेगा। बड़े बड़े आचार्यों की कथाएं आती है, ये हाँ जब तक शुद्धता नहीं है, थोड़ा जाओ फिर आ जाओ, थोड़ा जाओ फिर आ जाओ, जैसे एकदम स्विमिंग पूल में रहेंगे मरेंगे ना, तो डुबकी लगाओ तुरंत ऊपर आ जाओ, डुबकी लगाओ फिर आ जाओ, जब तक एकदम पूरा भाव, वो भाव तो कठिन है, जाते रहें सेवा करते रहें, जैसे मन खराब हो मथुरा से बाहर आ जाओ। अब जो वहां रहते हैं वो तो हो सकता है सब तपस्या, कौन भिड़ेगा उनसे, लेकिन ये जो हमारी भागवत की पुराणों की बातें हैं, ये बातों से तो हम बहस नहीं कर सकते। अब कोई कहे कैसे कह दिया, अंडर सेक्शन धारा 344 के हिसाब से तुम अपना मुकदमा दायर कर देंगे, कर दो फिर, अब सुखदेव गोस्वामी पर मुकदमा कर दो, इंद्र पर कर दो, बाढ़ आ रही है लाखों लोग मर गए, इंद्र पर वरुण पर मुकदमा कर दो, संबंध भेजो ना वरुण को, हिम्मत है तो थोड़ा बहुत दादागिरी तो चल जाती है, लेकिन ऊपर तो नहीं चलती ना। अभी वरुण से दादागिरी करो, यही हमारे काम करने का टाइम, यहीं पर तुम पानी बरसा देते हो, वरुण है ना इसका इंचार्ज, तो एक वकील को बोलो एक सम्मान भेज दो हमारा। तो हमारी जो बुद्धि है वो भी कहां तक काम करेगी, जितना इतना हमें सीमित है ना, हम कहां तक देख सकते हैं, जहां तक हमारी नजर जाएगी उधर क्या हो रहा है, रोड के उस पार क्या हो रहा है तो हमें मालूम नहीं। लेकिन अगर भगवत शरणागत हो जाते हैं, देखो राम रामायण में कथा है, 5 मिनट लगेगा, इंद्र का नहीं, भगवान जब अयोध्या में बाल लीला करते हैं, काग के भाग भये अगना हरि हाथ सौ ले गयो माखन रोटी। एक प्रसंग तो यह है कि जब कौवे ने भगवान के हाथ से मक्खन रोटी छीनी, तो उस कौवे ने विचार किया मक्खन रोटी तो मेरे हाथ आ गई है, तो क्यों ना कहीं दाल में बैठ करके आराम से खाऊंगा। तो कौवे ने उड़ने का प्रयास किया, ये सोच के कि कहीं पेड़ की डाल में बैठ करके चुपड़ी चुपड़ी रोटी खाऊं, और हुआ जाए जैसे वो रोटी लेके उड़ने लगा, भगवान पीछे से गए, अरे मेरी रोटी कहां ले जा रहा है, रोटी दे। कौवे ने सोचा बाल रूप छोटा है, कितना दौड़ेंगे, छोटे से इनके पांव है, थोड़ा दौड़ेंगे फिर थक जाएंगे फिर वापस चले जाएंगे। तो पहले वो 5 मिनट में देखता था, फिर 10 मिनट में, फिर 1 घंटा, फिर 2 घंटा, फिर 1 दिन, और बाद में स्थिति हुई कि 1 साल 2-2 साल में पीछे मुड़ के देखता, कहीं ये बच्चा फिर मेरा पीछा तो नहीं कर रहा, और जब पीछे मुड़ के देखता तो भगवान वैसे ही रोटी मांगते हैं जैसे अयोध्या के बगीचे में हाथ किए हुए। तो भगवान ने चांस ही नहीं दिया उस कौवे को, वो काकभूषणी नाम का कौवा है। और जब कौवा थक गया, क्या मैं रोटी खाऊं तो खाऊं कैसे, तब उस कौवे ने आंख बंद कर लिया और उस बाल रूप का ध्यान किया भगवान का, और एक सेकंड में अयोध्या के बगीचे में आ गया। और भगवान उसको रोटी दे रहे हैं और कौवा रोटी खा रहा। तो अगर हम सोचेंगे भगवान ने हमें संपत्ति दी है, हम इसका भोग करेंगे, इस लीला का तात्पर्य क्या है, जीव समझता है संसार में भगवान ने मुझे सब दिया है, मैं भोग करूंगा, भोग कहां कर पाता है। जितने भी भर्तरी सूत्रम में तो स्पष्ट लिखा है, भोगे रोग भयम कुले च्युत भयम वित्ते नृपालाद भयम मौने दैन्य भयम गुणे खल भयम काये कृतांताद भयम बले रिपु भयम रूपे जराया भयम सर्व भयम भयान्वितम भूई निर्णांग वैराग्य मेवा। भोग में रोग का भय है, जितनी स्वादिष्ट चीजें आप खाओगे, अभी मिठाइयां हम खाते हैं, तिवाड़ी स्वीट वाले को ऑर्डर दे दिया रसमलाई भेज देना, तो मंदिर में ही काम धाम कुछ है नहीं, रूम एसी, गाड़ी एसी, सब एयर कंडीशन, और खाना भी एसी, डायबिटीज होता है। ये जितने गुजराती मारवाड़ी लोग हैं सबको डायबिटीज है, क्योंकि खूब खाते हैं, काम हम कुछ है नहीं, काम करते हैं नौकर लोग, नौकरों को डायबिटीज नहीं होता क्योंकि जितना खाते हैं उतना कसरत भी करते हैं। आप किसी भी जुहू में सेठ के घर में जाके देखो, उनके घर में काम करने वालों की मसल देखो, तगड़ी होगी, और जो सेठ होगा एकदम ऐसा होगा, क्योंकि जो मेन सेठ है वो सूखी रोटी और दाल खाता है, डायबिटीज है ना। और जो बिहार और यूपी के चार नौकर घर में रखे हैं 25-30 साल के, वो सूखी रोटी खाएगा, सारी कमाई वो खा जाते, कहां भोग कर पाते हैं हम लोग, सारा भोग तो नौकर खा जाते, खाली नाम के सेठ ठहरे हम। तो भोगे रोग भयम कुले च्युत भयम, परिवार बढ़ जाने से झगड़े का भय, कहने को ठीक है मेरे 10 नाती 10 लड़के 10 बहुएं कम से कम 150-200 मेरा कुटुंब कबीला है, लेकिन 1 घंटा भी चैन से हो घर में, कोई उधर से बोल रहा है, कोई उधर से, कोई सोने देता है, इससे परिवार के बढ़ जाने से झगड़ा होने का भय है। और वित्ते निर्पाल आद भयम, जैसे ही पैसा आ गया इनकम टैक्स वाले पीछे लग जाएंगे, जब तक हम गरीब हैं घर में खाने के लिए नहीं है, कोई डिपार्टमेंट पूछने के लिए आता है, गवर्नमेंट ने किसी देश की गवर्नमेंट में कोई ऐसा डिपार्टमेंट है जो घर घर में जाके पूछे तुमने नाश्ता किया नहीं किया, आपने खाना खाया नहीं खाया, आपका बच्चे के स्कूल में फीस भरी कि नहीं भरी, कोई डिपार्टमेंट है? जैसे ही पैसा आया दो धमक जाएंगे, किधर से आया, जब नहीं आया कोई पूछने वाला नहीं, आ गया 10 पूछने वाले। इसे भर्तरी राजा लिखते हैं श्लोक, भर्तरी बहुत बड़े राजा थे, तो उन्होंने अपने मुंह से लिखा है श्लोक, वित्ते निर्पाल आद भयम मौने दैन्य भयम, चुपचाप बैठे रहो। आप सोचेंगे चुपचाप बैठा रहा हूं किसी बात नहीं करूं, लोग बोलेंगे पागल हो गया है, चुपचाप गुमसुम बैठा रहता है, इसको साइकेट्रिक डॉक्टर के पास ले जाओ। मौने दैन्य भयम गुणे खल भयम, बहुत ज्यादा गुणवान हो गए निंदा करने वाले शुरू हो जाते, इससे ज्यादा गुणी भी अच्छा नहीं। संसार में जैसे आप प्योर घी खाओगे डिसेंट्री होगी, प्योर दूध पियोगे डिसेंट्री होगी, प्योर दूध है कहां, मार्केट में है ही नहीं, क्योंकि थैली का दूध नकली दूध पी पी करके पेट इतना ढांचे में आ गया है कि अगर आप सही दूध अगर आज पीते हैं तो आपका पेट खराब हो जाएगा, नकली माल से सेट है ना पूरा ढांचा है। अगर आप सोचेंगे मैं थोड़ा असली खाऊं, असली में पूरा ढांचा बिगड़ जाएगा, इसलिए आप सोचेंगे कि हम अनुकूल परिस्थितियों को इस संसार में लाए, नहीं होगा ऐसे। आप बहुत गुणवान हो, कोई बदनाम कर देगा आपको। पहलवानी में देखा आपने, भले रूप भयम, कोई पहलवान आ गया, दूसरा पहलवान कहेगा हमसे कुश्ती लड़ो। स्पोर्ट्स में होता है नहीं, क्रिकेट में, इसमें उसने उसको हराया, फिर वो जीत गया, वो बोलेगा मेरे को हराओ, फिर चैंपियन ट्रॉफी वगैरह सब मिलता है। तो भले रूप भयम, ज्यादा सुंदर हो गए, अब जब तक ठीक ठाक हैं, जवान हैं, बाल हाल ठीक चल रहे हैं, शीशे में बार बार देखना ठीक है, लेकिन रूपी जराया भयम, जो व्यक्ति जितना सुंदर है उसके अंदर उतनी कुरूपता छुपी हुई है, और वो कुरूपता कभी भी प्रकट हो सकती है। जिस दिन जो जितना सुंदर व्यक्ति अगर वो कुरूप हो गया तो जी नहीं पाएगा। हम जितने सम्मानित व्यक्ति समाज में है, कल हमको समाज अगर सम्मान नहीं देगा तो हम तो ऐसे ही मतलब अपमानित महसूस करेंगे, अपमान में मर जाएगा आदमी कि मेरा कोई सम्मान ही नहीं कर रहा है। इसे सर्वभयम् भयान्वितम् भवि निर्णांग वैराग्यमेवा भयम्। इन भयों के चक्कर में मत जाओ, सिर्फ एक भय के चक्कर में जाओ, वो कौन है? अभय चरणार बिंद रे, भजहु रे मन श्री नंद नंदन, अभय चरणार बिंद रे, भजहु रे मन श्री नंद नंदन, अभय चरणार बिंद रे, भजहु रे मन श्री नंद नंदन, अभय चरणार बिंद रे, भज श्री नंद नंदन, अभय चरणार बिंद। श्री भक्त विनोद ठाकुर का भजन है, उस नंद नंदन कृष्ण सब में भय छुपा है, लेकिन भगवान के नाम में अभय छुपा है। जो भगवान के नाम का आश्रय लेते हैं, उनकी कथाओं का आश्रय लेते हैं, वो संसार में अभय निर्भय होकर के घूमते हैं। जो आश्रय नहीं लेते वो डर डर करके घूमते हैं, कब क्या हो जाए, कब क्या हो जाए। और कोई प्रश्न है?
हरे कृष्ण।
प्रसाद के लिए लेट तो नहीं हो रही बारिश?
नहीं, पांच मिनट। हरे कृष्ण। अच्छा, बाहर लोग जो भोगी ये भी जप करते हैं, ये भगवान का नाम लेते हैं, और मंदिर में जो रहते भक्त ये भी जप करते, भगवान का नाम लेते और प्रसाद पाते। भोगी जोगी भी ये भी करते, और दुखी भी जो ये भी नाम जप करते, मतलब फर्क क्या रहे?
फर्क ये है कि जो संसारी लोग नाम जप करते हैं कुछ पाने के लिए धन, जो बाहर के लोग हरे कृष्णा बोलते हैं, हरे कृष्ण नहीं बोलते, हरे कितना 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 हरे हरे। भक्त लोग बोलते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये फर्क है। हरे कितना हरे कैसे इसको चुना लगाऊं, हरे कृष्ण दस का माल हजार में कैसे भिड़ाऊं। और जो भक्त लोग जपते हैं वो शुद्ध नाम जपते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। फर्क तो बहुत है। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की।